có chỉ khi và tâm ngược. Có thể lắc lắc cái dương như mình, ra nạ có kia chạy. Gần đến có chú bác kia dương như mình đi ra nạ có chạy. Kintu kapatta ta ashtay mắt rồi. Kapatta mà kia? Kapatta sao lấy chân? Kapatta yê bhajan karna. Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Ghori dila de Ram, Hare Krishna, Hare
Krishna. Chakku dila de
Ram. Yê kapatta mắt rồi. Mane kia? Kishi sansari kabilata ki chesta mắt rồi. जहाँ को धन जल कुटुम परिवार और ये संसार में जो विषय है ये हमको मिल जाए, ये कपड़ता है मुक्ति पाना, मुक्ति हम हरे कृष्ण करें उससे मुक्ति हो जाएगी संसार। अरे अजामी को तो हो गया ना, हमको भी हो जाए, ये कपड़ता है। क्या होना चाहिए? अंत व्यवहार हमको कृष्ण प्रेम, ये हमें इसको पड़ता है। इसी के लिए हमारी सारी एनर्जी सब कुछ उसी के लिए है। कपड़ता है व्यक्ति का मुझे जिसमें ये कपड़ता है। अच्छा, जो भागवत पाठ करते हैं, प्रचार करते हैं, क्या उद्देश्य? संसारिक जीवन का ये कपटता हम लोग अंदर में कभी भी निष्कपट होकर के गुरु सेवा वैष्णव सेवा तो भगवान की सेवा, उसके लिए और कुछ नहीं, कृष्ण ही प्रसन्न हो बस। मैं ऐसे योग्य हो जाऊं कि कृष्ण की और गुरु वैष्णव की सेवा आंतरिक रूप में कर सकूं। सरलता का दूसरा नाम ही वैष्णव, जो सरल है वही वैष्णव। जो कि वैष्णव, किसी वैष्णव आया उसका आदर किया, किस लिए आदर किया? जाति कुछ ला पूजा करके, ये तो पड़ा ऐसा अंदर में एक बार में एक ऐसा दो चिन्ह नहीं रखा जाए, जो अंदर में चीज हो बाहर में वही चीज हो, ऐसा निष्पण कपड़ व्यक्ति ही वैष्णव है। परमहंस वैष्णव एक दास संसार, जो परमहंस वैष्णव है, कौन परमहंस वैष्णव? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सर्व गोस्वामी, कृष्णदास प्रजा गोस्वामी, उनकी परंपरा, ये सब सरल। सनातन गोस्वामी को चिंता मणि मिल गई या पारस पत्थर फेंक दिया बालू में कहीं, जहां भजन करते थे वहां पर गाड़ फेंक दिया, 10-20 वर्ष हो गए उनको पता नहीं है कि वहां पर रखा गया, और कोई आकर के शिव का भेजा हुआ व्यक्ति रुपये के लिए आया, धन के लिए, उन्हें लेकर जाओ खुद वहां मिल गई, लेकर के बड़े आनंद से चला, फिर सोचता है ऐसी चिंता मणि को भी पारस पत्थर को भी जिस लोहा को स्पर्श करने से स्वर्ण हो जाता है, और इसको फेंक रखा, इसको कोई जुलाई में इसमें किया करते चलन तक, फिर गए उनके पास में, बोले प्रभु आपके पास में देने कौन सी संपत्ति है जो ऐसे ऐसे पत्थरों को भी अपने पर त्याग कर लेना है, लेना है जरूर, इस पत्थर को फेंको, पारस पत्थर को फेंकवा कान में महामंत्र करो, सब छोड़ करके ये सब होता है। इन वैष्णव के अनुभव मेरा नहीं और मनुष्य वैष्णव ताई कहना सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण, यदि यथार्थ ब्राह्मण हुई है तो जिस जाति के हो उसे कोई मतलब नहीं, विपरीत जीवों की, जीवों की विपरीत रुचि को संसारिक में उनकी फसी हुई रुचि, ऐसे लोगों की रुचि को परिवर्तन करके कृष्ण में लगा देना ही प्रचारकों का या गुरु का या वैष्णव का अपमान कर, एक जीव की ये रुचि को परिवर्तन कर दिया जाए तो यदि महामाया के गुरु से एक व्यक्ति को भी तुम यदि बचा सको, उनकी वृत्ति को भगवान के तरफ में लगा सको, तो अनंत कोटि अस्पताल और शिक्षागार लाखों गुना श्रेष्ठ है, एक जीव की वृत्ति लगा दे, ये सबसे बड़ा उपकार है। भगवान और भक्तों की सेवा करने से भी जितने प्रकार की अनर्थ है ये सब गृहों में गृहव्रत छूट जाएगा, गृहव्रत मैंने क्या संसार के प्रति जो आसक्ति हुई ये छूट जाएगी। कृष्णेतर विषयों का संग्रह करना ही हमारी मूल व्याधि, हमारी मूल व्याधि मतलब रोग क्या है, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं को ग्रहण करना, कृष्ण के कर्मियों का संग्रह करना ही हमारे मूल व्याधि है, क्योंकि उसमें आसक्ति है, जब यह छूट जाएगी कैसे छूटेगी? कृष्ण में जितनी रुचि आती है, कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति जितनी प्रगाढ़ से प्रगाढ़ कम होगी, ये रोग अपने आप होगा और दूसरे किसी भी उपाय से नहीं जा सकता, हम लोग इस जगत में काठ और पत्थर के मिस्त्री होने के लिए नहीं आए हैं। चैतन्य देव के वाणी के मात्र पियोन है, संदेश पा रहे हैं हम और कुछ नहीं। मैंने जीन होकर के अपने ऊपर जैसे डाकिया डाकिया बात पत्र और रुपये पैसे बांट देता है, उसका एक छदान भी नहीं करता अपने यदि होता तो वो दंड करने का। इसी तरह से हम लोग चैतन्य महापुरुष के वाणी के पियोन मात्र है। गुरु का अभिमान कभी नहीं आए, मैं वैष्णव होगा इसका अभिमान कभी नहीं आने का है। हम जगत में अधिक दिन नहीं रहेंगे, हरि कीर्तन करते करते हमारा देह पाप हो जाने से ही हमारे देह की धारण की शक्ति, यदि हरि भजन करते हुए हरे कृष्ण करते हुए कृष्ण की चिंता करते हुए यदि हमने शरीर को छोड़ दिया तो फिर जीवन की सफलता अन्यथा एकाग्रता हो गया। इसलिए जगत में नहीं अधिक दिन रहना है, मौलुषी और पट्टा और स्थायी व्यवस्था नहीं होगा। अंत में बातें हैं चैतन्य देव की मनोभीष्ट, चैतन्य देव के मनोभीष्ट संस्थापक रूप गोस्वामी की चरण की धूलि ही हमारे जीवन का एकमात्र आकांक्षाता वस्तु है। ये जीवन में हमारा क्षेत्र क्या अंतिम रूप गोस्वामी की महाप्रभु के मनोभीष्ट संस्थापक श्री रूप गोस्वामी की चरण धूलि ही हमारे जीवन की एकमात्र आकांक्षा। माने क्या वो कहां मिलेगी, कहां मिलेगी ले जाएंगे वहां नंदगांव में वृंदावन में चले जाएंगे शिवापुरी में या राधा दामोदर मंदिर में जाओ वो तो वहां पर थे ना, तो वहां की चरण धूरी अभी तक तो होगी वहां कर ले लेकिन कितना सहज मत समझो। चरण धूरी है ये उनके विचारों को जो जगत में देने के लिए उन विचारों की जो धूरी कड़ा है उसको स्पर्श कर, ये नहीं अन्यथा तो किसी वैष्णव को उठाकर पटक दिया जबरदस्ती को चरण की धूलि नहीं दे रहे दस्ता पक्ति करते उनके चरण की धूलि को दे दिया और अपने शरीर में रगड़ दिया। और या जैसे कि प्रसाद पा रहे हैं वैष्णव लोग और वो प्रसाद मंदिर नहीं दे रहे हैं तो वो थाला समेत उठा दिया और सबसे देखते देखते खा दिया। ये सब उनके विचारों की जो कविताएं हैं उसको यदि संग्रहण करके ग्रहण कर दिया। हमारे नर जी के जीवन में उन्होंने क्या लिया, उनका अवशिष्ट लिया, अरे भाई विचारों का भी या ये मुझे उनके विचारों के लिए निमंत्रण दे गए उसमें प्रतिष्ठित कर गए यदि ये है तो ठीक। हमें तो देखो जो प्रभुपाद जब थे प्रभुपाद को सोने के ग्लास में एक बार कोई अच्छा शरबत बना करके दिए तो प्रभुपाद ने होठों से स्पर्श करके और एक शिष्य को दिए उसने सबसे बड़ा प्यारा है सबसे और उन्हीं गर्व के बारे आप पूरा नहीं सुनाए जो प्रभुपाद ने हमको ये सोने के क्लास का रखे रखे और सबके सामने बड़े शुद्ध होकर हुआ क्या पूजा के बाद हमने उनको देखा कहां भक्ति और कहां प्रसाद विचारों को ग्रहण करना चाहिए झूठे सही नहीं काम करता। विचारों का उचित से यदि कोई ग्रहण कर सके तो वो सौभाग्य माने की शीत को रक्षित करना चाहिए। स्थूल में मत जाओ, जैसे कि स्थूल में भी कुछ क्रिया है किंतु इतर में अंतरंग भावना को लेना चाहिए। रूप गोस्वामी का विचार क्या था भक्ति स्वामी सुंदर लिखा वो नहीं, उनका अपना क्या विचार था, वो तो सब विचार उन्होंने दिया साफ के तरह उनका अपना जो विचार क्या था ये उनका महाप्रभु कहते हैं कृष्ण के प्रति राधा जी के प्रति कैसी भावना थी उनकी सेवा अंतरंग सेवना क्या थी ये देखना। इस तरह से उनके चरण की सातवीं पर दिया बहुत अधिक हो गया मैंने सोचा थे 650 में छोड़ दूंगा ये भाग गया मैं एक कल आज यही तक प्रभुपाद जी आप सब लोग करने की बात करें और जगत में कुछ ही चीज के प्रति उद्देश्य न रखते ऐसी शुद्धा भक्ति की तरफ से हम लोग आ गए अपना जीवन इसी में इसी यज्ञ में संकीर्तन यज्ञ में और पहले
श्रील प्रभुपाद के कुछ उपदेश, उसके बाद चैतन्य चरितामृत के बारे में जो प्रवचन इसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है।
नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुः तन्मयतया तं सर्वभूतैवास्मि तवैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति विज्ञराति तं नयमाम चरणन्ति ते।
पंद्रह परिच्छेद। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में बैठ करके क्या करते थे इसका वर्णन दे रहे हैं। ये साधारण चीज नहीं है, ये बद्य भक्ति के अंतर्गत भी नहीं। ये राधा जी इस भाव को लेकर के आए, कृष्ण चंद्र राधा जी के जिस भाव को लेकर के आए थे उसमें दो चीजें थी। एक तो स्वयं राधा जी का भाव आस्वादन, राधा भाव से कृष्ण के माधुर्यों का आस्वादन करना, और राधा जी का प्रणय कैसा है और उन माधुर्यों को आस्वादन करके ज्ञान को आनंद कैसे आनंद होता है राधा जी के मन में, इन तीन चीजों के लिए तो राधा भाव है। और उसमें से कुछ जीव के बहुत उपेक्षित एक बहुत दूर तक जाने वाले वो जीवा जीवों पर करुणा करके उस प्रेम की एक क्षीण जीव को देना चाहते, वही है अनर्पित चरण चिराग। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अपने भाव में है, सची पुत्र के रूप में, सन्यासी के रूप में, और सर्वत्र नाम का प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े विद्वानों को परास्त कर दिया। वहां पर कृष्ण भाव राधा भाव में से कोई भी नहीं, साधारण रूप में कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं और जगत दार्शनिकों को जो जैसा है, बड़े बड़े विद्वान हैं, दार्शनिक है, उनको दार्शनिक पत्रों के द्वारा पराभूत करके आकर्षण कर रहे हैं नाम के और प्रेम को देने। जो साधारण व्यक्ति है उनको केवल नाम दे रहे हैं और उसके माध्यम से प्रेम दे रहे हैं। तत्वदर्शी जो लोग हैं उनको तत्व के माध्यम से उनको ले आकर के अपने उसको प्रेम को दे, जो जैसा है वैसा ही कर रहे हैं। तो उस समय में नवदीप लीला के अधिकांश भाग में या दक्षिण के प्रचार इत्यादि में राधानंद के प्रसंगों को छोड़ करके और बाकी जो समस्त देश के वासियों को वैष्णव कर दिया, इसमें चैतन्य महाप्रभु वाद्यता जैसे हैं, सची के पुत्र सन्यासी हैं, इस रूप में वो थे। कहीं कहीं राधा जी की दासी की स्तुति उनमें होती है, उस समय में जब होती है तब वो जीवों पर करुणा करके वो प्रेम धन देते हैं अनर्पित करें चिरा। और ऐसे स्थलों में जहां राधा जी का अभिमान हो रहा है वहां पर उस प्रेम को आस्वादन कर रहे हैं, राधा जी का प्रणय तथा उनके माधुर्यों का आस्वादन और उनका स्वागत का कैसे आनंद उनको होता है इस चीज को राधा जी के भाव का स्वागत। यहाँ पर राधा जी के किंकरी का भी मान नहीं, राधा जी का स्वयं अभिमान। यहाँ पर पहले लिखा कृष्ण वियोगे राधा कंठित मौन विशाखा के कहे आपने उत्कंठा पाए। विशाखा को कौन कह सकता है? राधा जी कहते तो विशाखा को और ललिता को कोई कह सकता है अपने भावों को? तो यहाँ पर कोई साधारणी गोपी अपने मन को भाव विशाखा जी से बतला रहे हैं? इसलिए यहाँ किसका प्रसंग है, ये राधा जी के भाव में उन्मत्त है। उद्घृणा किस अवस्था में होता महाभाव की स्थिति में, वो भी रूढ़ भाव। तो समझो जो यहाँ चेतन महाप्रभु अधिरूढ़ भाव में, अधिरूढ़ भाव में उपस्थित होकर के और कृष्ण के वियोग जनित भावों को यहाँ दिखला करके राधा प्रेम की भावना को आस्वादन करते हैं। कृष्ण का वियोग राधा उत्कंठित मन, राधा जी का उत्कंठित मन कैसे? श्रीमती जी नंदगांव में पहुंचे, रास्ते में कृष्ण का मिलन हुआ। कृष्ण को देख करके अपने हार इत्यादि को तोड़ करके पीछे से देख रहे हैं। कितने कितने भाव हैं दोनों दूसरों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। स्वप्न के साथ में यशोदा जी के वन में जाकर के मैया यशोदा जी का चरण बंदन कर दिए और यशोदा जी के आंखों छल छला जाती हैं और अपनी अपने बेटे के समान उनको अंक में भाग लिया। स्तुति में उन्हें देखा जाता है कि यशोदा कहते हैं तू हमारे कृष्ण जैसा हमारा प्यारा है, तू भी हमारी प्यारी
कृष्णवत प्रेम भक्ति।
अतः आशीर्वाद देती हैं और फिर रोने के कर्म में उनको समर्पित कर देती हैं। कहते हैं कि हमारे घर में सारे भंडार हैं, रोहिणी जी इसकी सबकी व्यवस्था करेंगी, देख और रसोई बनाएगी, ये बेटी बनाएगी, बनाती है रसोई। जो राधा जी कृष्ण के विरह में ऐसे उत्पन्न होती हैं ये ठंडी चीज भी चुरमुर कर जाती है, जैसे गंधे इत्यादि कमल के पत्ते इत्यादि। आज यहाँ पर 20-25 चूल्हे जल रहे हों, यहाँ कितने चूल्हे जल रहे हैं और उसमें लकड़ी भी जा रही है, चारों तरफ से ताप है और उनको ये सब ताप सुशीतल लग रहा है कृष्ण के मिलन से। तो सभी बन जाने के बाद में रोड़ी भैया ने ज्योतो दादी ने सब लोगों को सखाओं के सही कृष्ण को बिताया। धनिष्ठा जी ने बड़ी चतुराई से कृष्ण का अवशिष्ट दिया। उन्होंने कहा जैसे ये जो प्रसाद दिया है ठाकुर जी को जो भोग लगाया है कृष्ण के भोजन के अतिरिक्त वाला, ये तुम श्रीमति राधिका जी को दे दो और उनको अच्छी तरह से खिलाना और सब सब सबंध देकर के सौगंध देकर सौगंध सब सतक देकर के ये उनको खिलाने के लिए कहा। किंतु वो नहीं खाएंगे जब तक कि कृष्ण का उसमें विशिष्ट हो। वो झट चतुराई से श्रीमती कनिष्ठा जी बड़ी चतुराई के साथ में कृष्ण के जो अच्छे अच्छे जो पदार्थ दिए गए हैं उनको चतुराई से निकाल करके उसके अंदर भी मिला देती हैं, जो किसी को मालूम नहीं है अलग से वो है और वो उनके पास में भेजवा देती हैं, वो भी खाते हैं, दोनों का मिलन होता है। कृष्ण अब गोचारण के लिए चले, कुर्बान चले गए, वहां जाकर के गोचारण किया और इधर में कृष्ण को पूजा करने के बाद में यशोदा नंद इत्यादि लौट आए, सखियां भी लौट आई। किसी प्रकार से अब विरह उनको नहीं सहा जाता, किसी प्रकार से जाओ अब वो कुल दाना बनाती हैं जो हम उससे दर्शन करते और उसी समय में इतनी विरह में तप्त हो जाती हैं कि विशाखा जी से और ललिता जी से देखा नहीं जाता, तो वो रूप मंजलि को भेज देती है कृष्ण को देखने के लिए किस स्थिति में कहां और कैसे हैं, और ये बड़ी चतुराई से जाकर के उनसे मिलती है और पंखा देखती है, ये उनसे उनकी मिलने की चर्चा की गई है और नहीं और जगाती है पंखा। जगाने के बाद वहां से आती है, तो ये कृष्ण का मिलना बड़ा कठिन है, उनकी अब परीक्षा लेते हुए वहां पर कृष्ण की परीक्षा लिया हो रही। ये जो वियोग का समय है, इतनी उपकंठा जी उनको है जिसका वर्णन करना शब्दों में संभव कर रहे, इसी को यहाँ पर कृष्ण के वियोग राधा दो बार का समय। कृष्ण गोवर्धन की तराई में गायों को चरा रहे, पासी में किसी प्रकार से उनके रूप मंजरी से मिला, उन्होंने इंगित से कुछ ऐसी चीज की जिसे कि ये प्रतीक हो, उन्होंने कमल की कोई माला उनको देकर के उनको दे दिया, यही उनको दे कमल का फूल का मिलना, मैंने कमल की माला का मिलना मान लीजिए, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं देकर के दे दिया, ये पहुंच गए। और इसी के बीच में इतनी उत्कंठ किए हैं जो उनसे राह नहीं जाता, पूरी विशाखा जी को अपने उत्कंठा का कारण ये बतला रहे उसी समय। अभी जावत की बात श्लोक पढ़ी आपने, कहे मनसिता श्लोक अर्थ सुनाए दोहन कर दिया दिशा बिला, श्लोक अपने आप पाठ करते हैं और उसको सुना रहे हैं, उसका अर्थ बतला रहे हैं, चैतन्य महापुरुष स्वयं इसका अर्थ कर रहे हैं। श्लोक ये है, सौदा जामित सिंधु भंग ललना चित्त अदृशम प्लावक कर्णानंदी सनर्म रम्य वचन कोटिंदु सीतांगद सौरभ्यामृत संप्लाव आकृत जगत पीयूष रम्याधर श्री गोविंद सुत सकर्षति बलात् पंचेन्द्रिया आदि में हे आदि हे सखी विशाखा जी। सौंदर्यामृत सिंधु, पहले इस श्लोक यह श्लोक कहां से आया, फिर कन्ने से सामित्री इसका वर्णन, और यह श्लोक है गोविंद लीला। तो इस तरह कहता कौन है,
कृष्णदास कविराज
नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनसे 100 वर्ष बाद में आए, 100 बाद और महाप्रभु वहां पर बैठे थे, कैसे वो बतला रहे हैं इस श्लोक को, ये कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का उच्चारण किया, इसलिए ये उनका अपना नहीं है, ये समझो मूलतः ये चैतन्य महाप्रभु के मुख से राधा भाव में अविष्ट होकर के कहा। अब उसी को स्वरूप दामोदर जी अपनी परिचय में लिख लिया और वो कर्चा रघुनाथ दास गोस्वामी के पास गया और उन्होंने ये कर्चा उनको सुनाया, तब गोविंद लीलामृत की रचना हुई, उसमें ये श्लोक ऐसे समझो इस चीज को, नहीं तो यह संभव पर नहीं था। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बने श्री चैतन्य महापुरुष के मुख से निकला हुआ यह श्लोक है, इसलिए 8 श्लोक तो वो है और एक इसको भी रख लो और एक श्लोक और है, बरात में हरौ सौभाग्य भरण प्रकाश प्रेम गंध में बरात में हरौ गंधाम सौभाग्य भरण प्रकाश तुम वंशी बिलास्याम अवलोकन बिना विभत्म जत
प्राण प्रथम दुकान वृथा।
ये सब महाप्रभु जी के मुख से निकले हुए हैं। सौंदर यहां पर जब यहां पर लिखा हुआ है कि गोविंद लीला में क्या श्लोक है, किंतु इसको इसी रूप में समझो चैतन्य महाप्रभु जी के लीला में पहले ये सब दामोदर राय रामानंद को गंभीरा में ये बातें कह करके उसका अर्थ स्वयं का लीलामृत वर्णन करने का या श्लोक का अर्थ प्रकाश करना या व्याख्या करने की शैली इन्होंने कहां से प्राप्त की, रघुनाथ दास गोस्वामी से सीखी, जहाँ जहाँ वो रघुनाथ जाति ने कहाँ से सीखा, महाप्रभु से स्वयं भी सब दामोदर जी इनको बतला रहे हैं, बड़े आश्चर्यचकित होकर के बतला रहे हैं। देखो आज ऐसे हुआ, आज वो श्लोक इन्होंने ये पाठ किया और उसका इतना सुंदर अर्थ किया जिसको वो लोग जगत में कल्पना नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? सब दामोदर और रघुनाथ दास गोस्वामी को पिला रहे हैं उस अमृत को। सौंदर ज्ञानृत सिंधु भंग ललना चित्ता दृशम प्लावक। अरे श्लोकों का अर्थ समझो, सौंदर ज्ञानृत सिंधु, कृष्ण के सौंदर्य का सौंदर्य जो है वो अमृत का समुद्र है। समुद्र पास में खड़े हुए पर्वत को उसके चरणों को स्पर्श करता है समुद्र का पानी। यदि हिमालय जैसा पहाड़ भी उसके पास में खड़ा हो तो ये क्या करेगा? समुद्र का पानी तरंगे उछल कूद करके उसके चरणों को धो करके बस वहीं से शांत होकर के लौट जाए। किंतु यहां पर कह रहे हैं भंग लल्ला चित अदृशम प्लावक। ऐसा ये अमृत सिंधु है, भंग माने तरंग, उसके तरंगे बड़ी जोर से उछल रहे, उछल करके क्या करती हैं? साधारण समुद्र की तरंगे पर्वत के पर्वत को धौत करें और कृष्ण का सौंदर्य आधुनिक में जो तरंगे होती हैं उसकी एक बूंद भी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा कल जब बताया, एक बिंदु क्या करता है? बड़े बड़े पर्वत को एक तंत्र बो देता है और उसकी रग रग में अपने पानी को पहुंचा देता है। यह समुद्र का पानी किसी पर्वत के अंदर में नहीं जाएगा, किंतु वो पानी क्या करता है?
पर्वत
जहां भी पर्वत के अंदर में कोई भी छिद्र है, कोई भी जगह है, कहां वन प्रांत घास पात जो कुछ है अंदर बाहर सर्वत्र, और ये क्या करता है? पर्वत के बाहरी प्रदेश को चरण को स्पर्श धौत करके नीचे चला जाए। अब वो पर्वत क्या है? इधर तो समुद्र का जल, इधर तो हुआ हिमालय इत्यादि या और जो पर्वत है या पूर्वी पूर्वी और पश्चिमी पहाड़ियां दक्षिण में, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट ये पहाड़ियां हैं मद्रास के साइड में एक और बॉम्बे के साइड में उत्तर में, वो केवल पहाड़ियां हैं, सिर्फ सीधा चला गया तरंगे आती हैं नीचे से धोकर के पहाड़ अचल अटल अटल रहता है। वो ठीक अपनी अचल रहता है, तस से मस नहीं होगा, बहुत ऊंचा कभी भी हिलने वाला नहीं डोलने वाला स्थिर, उसकी जड़ें बहुत मजबूत, उसके शिखर को छुपाना उसको डुबा देना ये समुद्र के लिए कठिन है। अब इसको तुलनामूलक दृष्टि से हम अब कृष्ण पर लाए, कृष्ण का रूप आदि जो माधुर्य है वो जो अमृत का सिंधु है उसमें तरंगे इस समुद्र से कोटि गुण ऊंची उठती हैं और ये उस पर्वत के शिखर को भी अपने अंक में समा लेती है और रग रग में प्रवेश कर उसको जल में बना देती है। अब ये पर्वत क्या है? ये तो कृष्ण का रूप तो हुआ अमृत का समुद्र और ये समुद्र की तरंगे भी उस रूप के से जो चित्त में आने वाली जो भाव है उसकी तरंगे है। पर्वत क्या है? नारी चित्त का है, नारी मैंने क्या है? गोपियां और दूसरे नारी नहीं, उनका प्रतिपत्त धर्म अरुंधति और अनुसुईया इत्यादि सभी ऊंची है। अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी और वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, उनका प्रतिपत्त जगत में जारी है। सीता जी का भी प्रतिपत्त ये सब लोग हैं, किंतु गोपियां जो हैं ब्रज की इनका जो पातिव्रत धर्म है वो हिमालय के ऊपर से भी इन लोगों को भी पार करता हुआ बहुत ऊंचा है। इन लोगों का भी जो पातिव्रत धर्म है अरुंधति और अनुसुईया का ये पातिव्रत ठीक नहीं है। क्यों? इनका चित्त कृष्ण में और अपने पति में भी है। वशिष्ठ जी और अत्रि ऋषि में भी इनका अपने अपने पतियों के प्रति, तो या कृष्ण के प्रति या राम के प्रति भी है और अपने धर्म के प्रति भी है, लोक लज्जा के प्रति भी है, ये सभी में। और गोपियों का पातिव्रत कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, अटल।
अच्छा।
और अटल कहां तक उसकी जड़ें कोई ठीक नहीं और कभी भी हिलने वाली नहीं है, इसलिए अरुंधति और मत्री की अनुसुईया इत्यादि इनकी पातिव्रत धर्म की वांछा करती है, अभिलाषा रखती है। इसलिए गोपियों का जो धैर्य, गोपियों का पातिव्रत धर्म, उनकी लज्जा, ये एक एक शिखर है। जैसे हिमालय पर्वत में बहुत से शिखर है, गौरी शंकर, एवरेस्ट और कौन कौन कितनी ये चोटियां हैं, ऐसे गोपियों की ये सब चोटियां हैं। क्या किसी भी अपने धर्म से भी विचलित नहीं हो सकती, ये एवरेस्ट की चोटी है और धर्म को भी नहीं छोड़ सकती, इस तरह से ये अटल है और बहुत ऊंची है। किंतु फिर भी कृष्ण कार्य रूपी जो समुद्र है उसकी एक तरंग से ये चूरमार होकर के समुद्र में वो चूर, इसलिए उसकी तुलना की। तो इसलिए संताज्ञामृत सिंधु भंग ललना चित्त, ललनाओं का चित्त जो है वो कैसा है? अत्रि पहाड़ कृष्ण लल्ला मैंने सभी एक से एक, ये सभी इतनी 307 प्रकार की गोपियां हैं, एक एक ये क्या है
शिखर
शिखा, और उनमें 8 शिखाएं चारों तरफ से बड़ी बड़ी ऊंची हैं, और इन 8 शिखाओं के बीच में एक जो है श्रीमती राधिका जी, वो तुम है, उसकी सीमा नहीं कि कितनी ऊंची है। किंतु समुद्र की एक कण आकर के तरंगों की एक कण ऐसी प्रबल है कि उस सबको डुबा, उसी तरंग को भी डुबा देती है, उसी को ये कह रही है विशाखा जी से। सखी, हमारा धैर्य, हमारा व्रत, लज्जा, ये सब कहां की मिले? एक क्षण में ध्वंस हो जाती, उसमें डूब जाता है। संप्लावक उसको भी सम्यक रूपेण प्लावक एकदम उसको डुबा देती है। डुबादा ने संप्लावता माने क्या? उसमें जितना ऊपर से नीचे है पानी में डूब करके पानी ही जैसा हो गया, उसके रग रग में पानी भर दिया है। ये है करणानंदी नर्मरंग वचन कोट इंदु शीतानुगत। दूसरा हुआ करणानंदी सनर्म वचन, कर्ण को आनंद देने, मेरे कर्णों को आनंद देने वाली, उनके परिहासमय नम्र और कोमल चित्त को लाभी आनंद देने वाले ऐसे कृष्ण के वचन हैं। कोई भी स्त्री अपने कोई मैंने गोपियों के लिए कारण अपने सतीत्व को एक सेकंड के लिए भी नहीं रख सकती, लोक लज्जा को भी नहीं रख सकती, घर जो उनका चित्त हो जाता है, रूप जैसा है और वैसे ही शक्ति उनकी बोली में है, इतना मधुर, बंशी मधुर से मधुर है। किंतु कृष्ण के मुख से निकली हुई जो वाणी है प्रिय, ये कितना प्रेम से निकला हुआ परिहासमय वचन कैसा, कहां की रहने, तुम कौन है, यहां आ गई, तो उधर से उत्तर आता है तुम जानते नहीं, तो जब जानता तब पूछता क्यों। तो तुम जानते नहीं जैसे मैं कौन हूं। राधा जी जैसे करें मधुर वाणी से कृष्ण का चित्त छूट गया, और कृष्ण इतने मधुर रूप से कह रहे हैं न जाने क्या इसमें रस का समुद्र अमृत का समुद्र उमड़ रहा है उस वाणी से। उन्होंने कहा जैसे तुम नहीं जानते, तो मैं जानता हूं कि जो तू चोर है, बस ये जानता हूं हमारे बगीचे को तुमने चौपट कर दिया राउंड कर, और जितने अच्छे अच्छे फूल है तुमने चुरा दिया, और ये तुम्हारी सखियों ने चुरा दिया। हाँ आज परम धार्मिक को मैं देख रही हूं जो सामने है, कैसे परम बचपन से ही परम धार्मिक। कृष्ण कहता है बचपन से मैंने क्या कर दिया, अधार्मिक हो गया, तुम बड़ी भारी धार्मिक हो। धार्मिक इसलिए कहा जे जन्मते ही
नानी को बच
पुतना के प्राणों को आपने चोरी कर, और ऐसा कोई ब्रज में घर नहीं जहां पर कि आपकी यक्षी और धार्मिक भाव न व्यक्त हो, ऐसे आप धार्मिक धर्म धारित और इससे पेट नहीं भरा तो स्त्रियों की लड़कियों की कपड़े को चुरा दिया, ये तो और भी उन्नत धर्म, और इससे परम धर्म और ये समस्त ब्रज की लड़कियों को बुला करते राज किया, ये तो आपकी परम धर्म है। उसका धर्म इत्यादि सब चौपट करना ही आपका काम है, इत्यादि जो परस्पर की जो बातें हैं ऐसे ही सन्नर्म रम्य वचना करणानंदी और कैसा सनर्म परिभाषित परम मधुर परम आनंद में एक एक बात ऐसी सुंदर सुंदर सर ये कृष्ण को आनंद से भर देती है, या राधा जी को या गोपियों को आनंद से भर देती है। राधा जी कहती हैं ये ललिते ऐसा उपाय करो, ये भूत महाशय जी बड़े अपने को बलवान समझते हैं, इसलिए पौरुषी लीला में पुरुषों के जो कार्य हैं उसमें तो हम लोग को जीत लेते हैं, अब ऐसा कोई बात करो जिसे इनको अपने फंदे में डाल करके हम लोग इनको जीत सकते, तभी तब चुटकी बजाते हो जाएगा, तब कैसे तभी पासा का खेल आरम्भ कर दो। बस पासा का खेल जब कृष्ण हार जाते राधा जी कहती हैं ये चारणों जो ग्वालिये होते हैं इनका काम नहीं है,
गवारों का काम थी
गैये के पीछे पीछे लठिया लेकर के चलो और उनके गोबर दे करके इधर उधर घूमो, यहाँ पर बुद्धिमानों का काम है, यहाँ पर आपकी अकल नहीं चलेगी। उस समय मधुमंगल इत्यादि और कृष्ण की जो बातें हैं ऐसे परिहास होती है, उसको कहते हैं कि करणानंदी हम लोग के ही मन में इतना आनंद देता है तो कृष्ण के लिए तो बात ही क्या, इसलिए करणानंदी कहो तो कृष्ण के लिए करणानंदी या राधा जी के लिए करणानंदी, यहाँ पर राधा जी का प्रसंग है इसलिए राधा जी के कर्णों में आनंद बढ़ाने वाला नर्म सनर्म रम्य वचन गोपिया का सुनिए। श्लोक थे राजपंचाध्यायी का
रहस्यम
प्रिय प्रेम वीक्षण विहरण चमे
ध्यान
मंगलम रहस्यम विदम या हृदेश कुहुक नौ मन ये सब कैसे करणानंदी ये सब विषय ये सब रम्य वचन है। कृष्ण यदि किसी कोई सुने ना विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कोई भाव भक्त भी भाव की स्थिति में कृष्ण का रूप देखा और मूर्छित हो गया तो कृष्ण आकर के मुरली लिए हुए उसके पास में बैठ जाते हैं और कहते हैं उठो 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 सखा उठो या सखी उठो, उनकी बात को सुन करके जग उठता है और फिर उस बातों की चिंता करते माधुर तक फिर उचित हो जाए, और फिर कृष्ण स्पर्श करते हैं कोमल
सुकुमार जी
और वो फिर उठ करके देखता है, फिर उनके सुकुमार भाव को देखकर फिर उचित हो जाए। इस तरह से कृष्ण की पांच प्रकार के जो रस उसे साधक पिकल हो जाता है, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा सुनता है। और यहाँ पर मुश्किल है एक चीज, एक ही समय में समस्त इंद्रिया कृष्ण के इन पांचों रसों में एकदम सुन जाती है, आकर्षित हो जाती है। इसमें मन रूपी एक घोड़ा क्या करे, उसी को ये आगे बतलाए। तो ये रम्य वचन ये क्या करते हैं, गोपेंद्र सुतः सा परसती गोपेंद्र नंदन के ये पांचों खैं करें, इसको हमारे मन को कोटिंदु सुशीतांग का कोटिंदु करोड़ों करोड़ चंद्र की सुशीतता को पराभूत करने वाले कृष्ण के अंगों की जो शीतलता है, इतना स्निग्ध इतना सुशीतल और उसमें सुगंध भी, ये साधक के चित्त को तो बात क्या, राधा जी के चित्त को भी प्लावित कर देता है। प्लावित करके क्या करता है, पार्थिव प्रकृत धर्म चित्ती में चला गया, लज्जा कहां चली गई, लोक लज्जा धर्म कर्म सब सौरभ्या मृत संप्लवा अवृत जगत पीयूष पीयूष रम्याधर। कृष्ण के अदरामृत का वर्णन कर रहे हैं, सौरभ्य सौरभ किसको कहते हैं, सौरभ्या मृत संप्लवा अवृत सौरभ नासिका को सौरभ्य, कृष्ण के अंगों की ऐसी सुंदर सुगंध है जब कभी भी जैसे कि उद्भव गए ब्रज में, कोई कहती है जैसे ये कौन है, श्याम है किंतु श्याम नहीं है, किंतु सही कहते मैं जानती हूं ये कौन है, कृष्ण का दूत है, कैसे समझ लिया कृष्ण का दूत है, कृष्ण के अंगों का उतरा हुआ ये माला और उनके कपड़े से पहन करके आया है, यहां देखने से तो भूल हो जाएगी, हो सकता है कि वैसा दूसरे का हो, किंतु एक चीज है जो कभी भूल नहीं कर सकती, ये नाक भूल नहीं कर सकती, क्या नहीं भूल कर सकती,
इस नाम का
इस फूलों में जो सुगंध आ रही है वो फूलों के सुगंध को भी पराभूत कर प्रोड़ीभूत कर कृष्ण के अंगों का सुगंध है, कृष्ण ने इसको धारण किया होगा, नहीं तो ये सुगंध इसमें आ नहीं सकते, इसलिए कृष्ण के दूत को छोड़कर वो भी प्रिय दूत होगा तब, इसलिए कृष्ण के अंगों का ये सुगंध यहाँ पर है, इसलिए ये दूसरा को इसको दूसरे को नहीं मिल सकती, इसलिए कृष्ण का दूत। दादाजी कृष्ण के द्वारका जाने पर सोच रहे हैं, विरह में होते 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 ऐसे ब्रह्म की स्थिति पहुंची कि उनको यह भ्रम हुआ ये कृष्ण द्वार आ गए, भूल गई जो द्वारका गए, कहीं छिप रहे थे और उनके सामने आए, सामने आने पर राजा जी देखती हैं कि उनका कोई आंख बंद है, कहती हैं पहले तो लग जाए विशाखा, फिर मुस्कुरा उठती हैं उसी विरह में, हम मुस्कुरा कर कहते मैं समझ गई, कैसे समझ गई, अरे ये तो कृष्ण के अंगों का ये गंध आ रहा है, इसे जरूर कृष्ण तुम ही ये आर्य हैं या लंपट हैं, आर्य वही चोर है, ऐसे करते तो कृष्ण को पहुंचाने के लिए ये अंगों का नासिका का घ्राण ऐसा जिसको आदमी को पागल बना देता है, गोपियों को पागल बना देता है, और इस पागलपन के कारण उनका जितना पापी भक्त लोक धर्म लज्जा शील जो कुछ है गुरुजनों को सामने दे करके भी लज्जा करना ये भी सब कुछ है। ये है उनका गंध सौरभ्यामृत, अमृत को भी पराभूत करने वाला या सुगंध में जो कुछ सुगंध है सबको पराभूत करने वाला ऐसा कृष्ण के अंगों का ये सौरभ्य मैंने सुगंध है। और आवृत संप्लवावृत जगत पीयूष पीयूष माधव अधर पीयूष पीयूषरम अधर। कृष्ण का ये मुखारविंद का अधर अमृत वो कैसा है, इतना अमृत है वो ये पीयूष को भी कोटि कोटि बार पराभूत कर दे। पीयूष से अधिक कोई अधिक सुस्वादन चीज नहीं है इस विश्व में, किंतु एक कण के द्वारा उसके समस्त माधुर्य को ये पराभूत कर देने वाली कृष्ण की अधर अमृत है, जो कि सब गोपियों के इन भावों को जो पहले बतलाया उनको क्षण मात्र में बुला करके एकदम कृष्ण के इन पांच प्रकार की जो माधुरियां हैं उसका समुद्र है उसमें इनको अतुल डुबा दो। गोपेंद्र श्री गोपेंद्र सुत सब कर्षती बड़ा पंचेन्द्रियान आदि में बड़ा आकर्षती बलपूर्वक आकर्षण करते। अब इसका चैतन्य महाप्रभु जो अर्थ कर रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु के ही अर्थ का ये जो मैंने सूचना दी
सब सौरभ
या माधुर्य कहना न जाए देखी तो भी पंचजन एक अश्व मूल मन चम पंच पांच जी के भाई कजे सखी कृष्ण का कोमल स्पर्श मैंने अंगों का की कोमलता सौरभ्य कृष्ण के अंगों का सुगंध और अधर रस कितना हुआ एक दो तीन चार पांच ये पांच ही यार माधुर्य कहा ना जाए इन पांचों का माधुर्य कहीं नहीं जा सकते ये पांचों समुद्र हैं और ऐसे हैं जो बड़े बड़े पर्वतों को भी अपने अंदर में प्लावित कर देते हैं। देखी लोगी पंचजन देखी लोगी पंचजन एक अश्वमन हमारी पांच इंद्रियां हैं ये पांच डकैत डकैत किसको कहते हैं अपनी चीज न रख करके दूसरे की चीज को हड़पना चाहना जबरदस्ती लाठी के बल पर हड़प लेते हैं उनको कहते हैं दसवीं या डकैत। तो ये पांच जन तो डकैत और ये एक अष्टमोर्मा अतः कृष्ण के ये पांच हैं एक साथ में एक ही अश्व है वह है महाप्रभु जी का रहे मेरा मन अर्थात राजा जी का मन और पांचों स्पर्श सवार हो गए और वो अपने अपने विषय की तरफ में दौड़ रहे हैं। वो तो विषय क्या है कृष्ण का रूप रस गंध शब्द स्पर्श इतना आकर्षण कर रहा है कि पांचों उनके तरफ में लूटना चाहते हैं। लूटता है कब एक आदमी ने देखा जिसके घर में पूरा माल है आज बैंक से लाया है 1,00,000 रुपया या कोई चीज ऐसी है अभी उसको अंदर में विचार नहीं होता यदि मैं पकड़ा जाऊं तो क्या होगा क्या होगा वो ऐसे उसमें लुप्त हो गया कि प्राण जाए बरु वचन भगवान की प्राण भले ही चला जाए किंतु इसको ले करके रखना भले ही उसको मार डालना है कोई बात नहीं मैं मर जाऊं तो मर जाऊंगा। भाई देखो ऐसा मत करो दूसरे चीज का हड़पना से पाप होता है नरक जाना पड़ता है इसकी कोई परवाह नहीं उसको डकैत जब 10-5 आदमी को मार करके भी मैं ले आऊंगा और पाप हमको भोगना पड़ेगा नरक जाना पड़ेगा इसकी भी परवाह नहीं करता कुछ चिंता नहीं करता तब डकैती करता है। अरे देखो यदि तुम पकड़े जाओगे तो जेल में जाओगे और क्या जेलखाने में तुम्हारी दुर्दशा होगी कोई परवाह नहीं। अच्छा मान लिया कि यहां नहीं पकड़े गए तुम्हारी कोई भी कुछ शास्ति लेकिन तू नरक तो जाना पड़ेगा ना उससे बच नहीं सकते कोई परवाह नहीं। अच्छा पकड़े जाने का जो न्यायालय में हिस्सा होगा और तुम्हें पीट करके यदि पकड़ लिए गए उसी समय में तो क्या होगा पीट पाट करके तुम्हें मार डालेंगे कोई परवाह नहीं हमको तो लेना ही। ऐसा ही लोग कृष्ण के इन पांचों के प्रति जिनका है वो डकैत इसमें सखी है सुन मोर दुखर कारण। देखो ये पांच दिशाओं में जा रहे हैं, एक क्या है रूप, इसके तरफ में कौन जा रहा है, सौरभ की तरफ में कौन जा रहा है, मधुर शब्द की तरफ में कौन जा रहा है, स्पर्श किसके लिए जा रहा है,
त्वचा
का उनके तरफ में जा रहा है, और बाकी का रहा है
रस,
रस जीवा का रस। ये पांच एक घोड़े पर बैठे हैं, अतः मन के सहारे ये समस्त विश्व का रस लेते हैं, ये समझो। आंख देखती है किंतु आंख देख करके भावना कहां जाती है, कैसे लेता है वो,
मन के
मन न रहे तो आंख केवल देखने से ही कुछ नहीं होगा, मन उसमें रस पैदा करता है। कान से सुनने में रस की अनुभूति कौन करता है, कान करता है,
मन,
कान को कुछ पता नहीं, आंख देखता है उसका कुछ माधुर्य साधन आंख करती है, वो कौन का आंख के माध्यम से मन करता है, कोमल है कि कैसा है, ये कौन करता है, ये स्पर्श करता
है। अच्छा,
और जीवा का रस, जो रस कैसे मालूम होता है जीवा से, ये सारा जगत इन पांच प्रकार के विषयों में अपने इंद्रियों को पांचों को लगा करके रस अनुभव करना चाहता है और वो मरता है, कृष्ण विमुख रूप माया इसी के द्वारा समस्त जगत को आकर्षित करके ऐसा चेक कर दिया है, जान रहे हैं कि स्त्रियों का संग बुरा है पुरुषों का बुरा है, कभी नहीं मानते, आदमी मार रहा है कुत्तों को मानते हैं, शुक्रों की तरफ में देखो सारा प्राणी पशु पक्षी की पतंग लता पेड़ इन पांचों के द्वारा बधा हुआ है। धर्म का विचार करते हैं, तत्व का विचार करते हैं, सब कुछ देखते हैं किंतु मन को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते, ये मन ही सबका ये है। तब मन एक घोड़ा किसका, महाप्रभु जी का, राधा जी का मन, विशाखा जी का एक तो घोड़ा, और सो पांच जगत चढ़े और पांच वस्तुओं की तरफ नहीं चढ़े, एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, एक ऊपर या नीचे। अब एक ही घोड़े को पांचों एक साथ में लगाम कसकर और पांचों हंटर या कोड़ा लिए हुए हैं, लगाम खिंचा लगाया, उधर जाने के लिए जैन ऐसे किया तैसे ही एक दूसरे ने खींच लिया और दूसरी तरफ ले। घोड़े की चढ़ाई यदि अच्छे घोड़े हो ना, जैसे देखा होगा तब समझेगा, ये घोड़े कट्टू वाले और ये सब नहीं, मिलिट्री वाले भी नहीं। उस समय हमने तुम लोग जब पहले यदि देखा होगा पहले तो बड़े बड़ा शौक से लोग घोड़े का पाते, जैसे चेतक और उतल की घोड़ी बिंदीला, बिंदला उसका नाम, वो मन से बातचीत करती आकाश में उड़ जाती, जहां कहते वहां पर चली जाती, चेतक एकदम हाथी के ऊपर मस्तक रख करके एकदम खड़ा हो गया और उन्होंने अच्छा चला कि बाई चांस उसको बचना था बच गया। तो ऐसे ही दंड घोड़े को लगाम कस करके और लेकर के चाबुक दे रहे हैं और उसको उधर ले जा रहे हैं, इतने में दूसरे ने पकड़ लिया, दूसरी तरफ में उड़ गया, कृष्ण घोड़ों को हाँक रहे हैं अर्जुन को, देखा ना कैसे वो मुख से कर रहे हैं और हिम कर रहे हैं, और एक तरफ में वो ले गया वो दूसरी तरफ, घोड़े का प्राण नहीं बचेगा, पांचों तरफ से उनको खेच रहे, एक मन रूपी घोड़ा। और ये पांच अश्वारोही कौन है, इंद्रियां, ये इंद्रियां हम लोगों को बद्ध जीवों को संसार के विषय में फंसा करके सदा के लिए चौपट कर देती, और ये इंद्रियां यदि कृष्ण की तरफ में हो ललक के साथ में ऐसे दौड़े तब समझाया जाए जैसे हमारे ये चैतन्य महाप्रभु, हम लोगों को इतना नहीं होगा किंतु हमारे स्वभाव में जितना है, जैसे विषय में हो रहा है वैसे उसमें तो चलना तो चाहिए। बस आज आगे मंझाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य पतितानं पावनेभ्यो। महापुरुष के भाव इतने सहज नहीं है भाई, अभी तो हम लोग लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, काम है क्रोध है, अभी एक दूसरे को उठा करके पटक किया, कोई लड़ाई घर में घर में झगड़ा करके आए, कोई कुछ किया, कोई खाने में, कोई मस्त है, कोई संसार में मस्त है, और कहां ये ग्लोब वृंदावन की सबसे सर्वोच्चम वहां की धारा। तो यदि डूबना चाहते हो तो भाई इस सब चीज को सदा के लिए छोड़ करके कान पकड़ करके कराओ, नहीं तो ये सुना भी दिया कुछ होगा नहीं। ये देश को स्थिर रखने के लिए सब समय चित्त इन्हीं में रहे। सुनो है का, वो ना कहा है
सुनो है
स्वरूप माधुरी,
सुनो है रसिक जन कृष्ण
स्वरूप
देखिले नयन अचेतन
कैसा सुंदर सा वर्णन करते हैं। केतन तो करते हैं कुछ भी भाव नहीं आता, क्यों आएगा? जंग लगा हुआ उस पर, वो उसको उस लेह को जिसमें जंग लगा हुआ है वो क्या होता है, खींच नहीं पाता,
चुंबक खींच नहीं पाता।
ऐसे हमारा चित्त ये सब सुनते हैं पढ़ते हैं, इतनी सुंदर व्याख्या भी होती है किंतु हम इसको समझ नहीं पाते। दुर्भाग्य हमारा है। और हमने आप लोगों को गुरु जी के पास बुलाया इसलिए ये इतना सुंदर भाव देने के, दुख है जैसे नहीं देता आप लोग उसके लिए तैयार। सब जितना जंजाल है मान अपमान इत्यादि, मन सोवेगा क्रोध वेगम दिवागम सर्वान मांग आपको दर्शन मान रहे कुछ लोग कल मान, जिसमें आज तक तो दर्शन मान रहे हैं उसका कारण बताते हैं कि आज चतुर्दशी रात में पड़ेगी, इसलिए जिस रात्रि में चतुर्दशी होती है उसी को मानते हैं। और वैष्णव लोगों का कहना है कि चतुर्दशी में सूर्या चतुर्दशी के समय में चतुर्दशी नहीं हो तो एक सेकंड भी सूर्योदय के बाद में त्रयोदशी रहे और सारा दिन चतुर्दशी होता भी उसमें देर हो जाता कांटा, इसलिए उस दिन नहीं मानते। पर वेद मानना उचित है, पूर्व वेद नहीं। अतः अमावस्या से यदि मिली भी हो तो कोई हर्ज नहीं, रात में अमावस्या भी हो कोई हर्ज नहीं। यदि दूसरे दिन एक मिनट भी चतुर्दशी हो और सारा दिन अमावस्या हो रात में तो कोई भी हर्ज नहीं। इसलिए चतुर्दशी के साथ में अमावस्या मिली भी कर सकते हैं, शुद्ध चतुर्दशी भी कर सकते हैं, किंतु त्रयोदशी से मिली हुई चतुर्दशी को नहीं कर सकते। आज करीब करीब 5-6 घंटे से भी अधिक
10 बजे
तक,
10:30 बजे से 10 बजे 30 मिनट के बाद लगा है
तो वहाँ तक तो त्रयोदशी है 10 बजे तक पूर्वाह्न तक
10:30 तक
और इसके बाद में चतुर्दशी आई है, इसलिए उसमें पूरा देर है त्रयोदशी का, इसमें वो सूर्य की तरफ में कांटा है। इसलिए आज जो उसको करेंगे उनको धन धान्य पुत्र ये संसारिक चीज ये बंधन के रूप में उनको मिल सकती है जो माया अच्छी तरह से कष्ट करके उनको संसार में लगा दे। और जो कल करेंगे शुद्ध रूप में वो गोपेश्वर महादेव जी की कृपा है, उनका माया बंधन दूर हो करके भगवान के चरण में उनको करेगा, जो जैसा चाहता है वैसा करेगा। इसलिए आज हम लोग त्रयोदशी नहीं मान रहे हैं, आज हम लोग
चतुर्दशी नहीं मानते हैं,
चतुर्दशी नहीं मान रहे हैं, कल हम लोग मानेंगे। उसमें जो ऐच्छिक रूप में जो मानना चाहे वो मानेंगे, शंकर पर जिनकी जिनका विश्वास और श्रद्धा है जो वो भक्ति दे सकते हैं तो उनको करेंगे। यदि वैष्णव की तिथि हम पालन करते हैं और शंकर जी के समान और दूसरा कोई वैष्णव नहीं है तो क्या हमने उनका पालन किया। इसलिए हरि भक्ति विलास में ऐच्छिक रूप में लिख करके भी मूल में और टीका में सनातन गोस्वामी जी ने कहा वैष्णव मात्र को यह करना चाहिए सबका, विशेष करके ब्रजरस में ब्रजभक्ति में वो विश्व महादेव जी का बहुत बहुत हाथ है, उनका बहुत महत्व है, इसलिए प्राय ब्रजवासी सभी लोग विष्णु भक्त हैं वो करते हैं। सनातन गोस्वामी यहाँ भी रहते थे, शंकर जी के बहुत निकट रहते थे, गोवर्धन जब जाते तो रहते थे
चक्रेश्वर
महादेव, जबकि नंदगांव जाते तो नंदीश्वर जी के पास, जब 500 पास हुए और वृंदावन में रहते थे तो गोपेश्वर, और गोपेश्वर के बाद में जब पूरे हो गए तो रहते थे मनखंड जी महादेव के निकट, और जरूर उनके साथ में संपर्क करते, तो उनके अनुगत जो है वो विचार करके देखेंगे हमको क्या करना चाहिए। यदि शंकर जी सब कुछ में वैष्णव है और वही सदाशिव है तो उनकी उपासना हम लोग कर सकते हैं, इसलिए हम लोग करते हैं, और जो नहीं चाहते हैं वो न करें, इसलिए तो अपराध उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग कल लाइव हम लोग कल ही करेंगे, और कल ही शंकर जी के संबंध में उनका जो तत्व है वो बतलाने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग चैतन्य चैतन्य जैसा पढ़ रहे थे दर्शन चेष्टा करें, कल हमने चैतन्य चरिता से कहा चैतन्य महापुरुष गंभीरा ने राधा से भाव से विभूत विभावित होकर एक दिन रामानंद और संत दामोदर जी के गले पकड़ करके और उनको अपने मन की दृष्टि लाभ विशाखा जी को और ललिता जी उनको समझा रहे हैं, इसी रूप में दामोदर और रामानंद जी उनको कभी जरूरत पड़ती है तो भागवत के श्लोक कभी कर कृष्ण का नाम कभी और जितने पद हैं जगदीदास के पद विद्यापति के पद कभी जयदेव के पद उनको गा करके और उनके भावों की पुष्टि कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मेरा एक मत है और उसके विषय 5 हैं और हमारी इंद्रियां 5 हैं, एक घोड़े पर हमारा मन मन और उसके ऊपर में हमारी 5 इंद्रियां सवार हो गई और पांचों सवार 5 तरफ जाना चाहते हैं, एक जाना चाहता है उसके पुरुष की तरफ, एक उनके रस की तरफ, एक जाना चाहता है उनके
गंध
उनके सुगंध की तरफ, एक उनके
शब्द
शब्द की तरफ में
स्पर्श
नाम रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध शब्द और स्पर्श चारों कृष्ण के ये महासमुद्र हैं और ये आकर्षित करते हैं, रूप अपनी तरफ आंख को और नाक को स्पर्श करती है, सुगंध के अंगों का सुंदर बोली मधुर बोली ये कान को और रख दिया गया, जीवा को
रस
कृष्ण का रस
स्पर्श
और स्पर्श को इंद्रियां को कृष्ण का स्पर्श कोमलता अपनी तरफ में, एक घोड़े पर ही 5 सवार हैं और 5वां वो है कि हम अपने अपने विषय में चले, घोड़ा एक है, एक तरफ वो जाने के लिए रूप की तरफ में जाना चाहता है, दूसरा एक ही समय में उनके मधुर शब्दों को सुनना चाहता है, एक ही तरफ में कान उनकी मधुर बोली को सुनना चाहता है, स्पर्श उनको स्पर्श करना चाहता है, इस प्रकार से सभी
घोड़ा है
मन। अब घोड़े को 5 सवार अपने अपने गंतव्य स्थल की तरफ में लेना चाहता है, घोड़ा एक तरफ जाता है तो दूसरा उसको उधर में फेंकता है, इस तरह से घोड़े का प्राण अव्यय कर दे। सखी है सुन मोर दुखेर कारण मोर पंचन द्रियगन महा लंपट दस्युवन। लंपट दस्युवन, दस्यु क्यों कहा गया? क्या है दूसरे के धन को अपहरण कर लेना, लूट लेना, ये काम है दस्युओं का, डकैतों का। यहां पर राजा जी कह कि मेरा मन घोड़ा है और इंद्रियां पांचों डकैत हैं। क्यों? सभे करे हरे परभम। दूसरों का धन अपहरण करना, डकैती डाल करके ले लेना, जोर जबरदस्ती, ये डकैती का काम। कृष्ण पर है, पर धन है, किनके धन है? उनके तो अपने पति, ये पांच राधिका जी का जो मन है, राधिका जी के तो पति है अपना अलग, गोपियों के एक एक गोपियों के अपने पति हैं, और उनके लिए कृष्ण प्रधान है क्योंकि पार्थिव भाव है। इसलिए यह मन अपने पति की तरफ में न होकर के, अपने धन की तरफ में नहीं जा करके दूसरे का धन हड़पना चाहता है। परकीय भाव ये पर कृष्ण उनके पति नहीं है, तभी इनको उनके तरफ में ये लगना, उनको उनके रूप को, उनके रस को, इत्यादि सब पांचों चीजों को हड़पना चाहता है जोर जबरदस्ती। अब मेरा मन घोड़ा किस तरफ जाएगी? सभे करे हरे पर्व, ये सभी पांचों इंद्रियां हमारी हैं, कृष्ण पर पुरुष हैं, किंतु उनका रूप देखना चाहती हूं, उनको उस रूप को ग्रहण करना चाहती हूं, उसका उपभोग करना चाहती हूं, ना दूसरे पति का अंग सौरभ लेना चाहता है, जीवा उसका अधरामृत इत्यादि का रस आस्वादन करना। इसलिए सभी कृष्ण प्रधान, यद्यपि कृष्ण प्रधान नहीं है, किंतु जो माया ने विप्रलम्ब भाव के लिए, अप्रगाढ़ प्रीति के लिए उनका विवाह दूसरों से करा दिया है, मित्रलीला में कृष्ण की ये सभी अपनी शक्ति है, स्वरूप शक्ति के ये प्रकाश कार्य रूप में, कृष्ण के अतिरिक्त इनका दूसरा कोई नहीं है, किंतु प्रकट लीला में इसे इस रूप में ये दिखलाते हैं। इसलिए इस प्रेम की महिमा को दिखलाने के ये दिखलाते हैं। इसलिए स्वरूप शक्ति राधिका जी हैं, उनके काय दूत प्रकाश सब ये जितनी भी गोपियां हैं पर नहीं है, इसको ब्रह्म संहिता में भी दिखलाया गया,
आनंद चिन्मय रस
प्रतिभा, आनंद चिन्मय प्रतिभा निज रूप तया कला, कृष्ण के ये रूप स्वरूप, कृष्ण की शक्ति के, राधा जी के ये काय व्यूह या प्रकाश है, इसलिए अपनी कला के भांति ही है, शक्ति है, कला मानी है शक्ति, कृष्ण की ये शक्ति, जैसे गोविंद जी हैं उनकी ये शक्ति ये स्वरूप शक्ति या उनके प्रकाश, उसे अलग नहीं है। तभी इस लीला को पार्थिव भाव में दिखलाया गया है, केवल इसका उपकर्ष दिखलाने के लिए, और ये पार्थिव भाव नित्य है, गुरु वृंदावन में भी वो भाव, ऐसा नहीं कि वहां नहीं है, यही पर प्रकट, ऐसा नहीं, वहां पर भी योग माया की कृपा से या योग माया की प्रभाव से ऐसा वो समझते हैं कि हम पार्थ हैं, उसी की छाया इस जगत में, इसलिए वहां भी नित्य है, किंतु जैसे वहां पर कंस नहीं है, इस जगत में कंस प्रकट रूप में है, वहां पर कंस का केवल भाव है। कैसा भाव? जैसे अपने घर में भूत का भ्रम हो जाता है, जो भूत है अंधकार में जब अपने घर में जाते हैं, कोई खड़खड़ चुहाई गया, अरे भूत डर जाते, भूत नहीं है। ऐसे ही एक अभिमान, ये शरीर में भी ऐसे ही अभिमान झूठा हुआ, उसी तरह से उस जगत में पार्थिव का भाव नित्य है, और इस जगत में उसका प्रकट रूप में अभिमन्यु, वही जो भाव है अभिमन्यु बनया, वही भाव और दूसरे तीसरे ये गोप बने, गोवर्धन इत्यादि मल्ल और दूसरे दूसरे बने, कृष्ण ही वहां पर सर्वस्व, उन्हीं के लिए प्रकाश, एक तरह से वो भाव है, यहां पर मुक्ति है, वहां पर मुक्ति है, इसलिए कंस किस जगत में है, उस जगत में क्या है,
भाव
कैसा भाव, कंस नहीं होने पर ये भाव, ये कंस मारने के लिए मथुरा में गए थे, वहां से अभी लौटे, विरम होने पर, विप्रलम होने पर ये होता है कुछ दिनों के लिए ऐसा भाव, कृष्ण हमें छोड़कर के मथुरा चले गए ऐसा भाव, वहां पर यथार्थ में ये सब चीजें गई। इस चीजों को हम लोग नहीं समझ सकते, भजन के प्रभाव से माया जितनी दूर जाएगी उन चीजों को समझ, अभी चेष्टा करेंगे समझने के लिए जगत का भाव आएगा और उसी में रस बच करके माया देगी, इसलिए इन चीजों पर अधिक तरह से ये बस शास्त्र में जो लिखा उसको मान लो, मान लो उसको, लेट ए बी सी एट ट्राइंगल, लेट ए बी एनी अमाउंट, मैन लाख, टू लाख, थ्री लाख, और इसके बाद में इसको सॉल्व कर दो, बस उसी तरह से लेस करो, नहीं तो जगत में नहीं कुछ कर सकते हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे से नहीं मान सकते हैं, कोई चीज ही नहीं सिद्ध होगी। जैसे यदि आपको हम और ना कहें, हम कहे बॉ है, कोई नहीं उसको शिकार बदला सिद्ध कर सकता है, जी आप कोई शिकार सिद्ध नहीं कर सकता, हम आपको कहेंगे नहीं ये बॉ है, आप हमको समझा कर, कोई छूट नहीं कर सकता, उसी तरह से स्वयं सिद्ध चीजें जो होती हैं उसको मान लेना, मान करके मान माने ये आम को बेर कर दिया, ऐसा नहीं आम को ही आम कर, इन्हें जो वस्तु है उसको अभी मान लो, पीछे से तुम्हें इसकी अनुभूति होगी। जैसे पहले होता था लड़कियां अपने पति को मनी में कल्पना करती, संकल्प ये हमारे पति हैं, कैसे जो ही स्वयंवर हो रहा था द्रौपदी जी का, अर्जुन को देखकर तो उन्होंने पति के रूप में वर्णन कर लिया, संकल्प कर लिया, इसलिए जब कर्ण उठा मारने के लिए उस पुतली में चक्र उसके आगे चल रहा था, तो जाते थी ये मारेगा, मार देगा, ये कर्ण बहुत तेजस्वी और धनुर्धर है, मारेगा जरूर, इसने पहले ही कहा गेहूं था जिसका कुल सिर कोई ठिकाना नहीं है, मैं ऐसे व्यक्ति को पति के रूप में वर्णन नहीं कर सकती, भले ही वो लक्ष्य वेद कर दे, उसका कर्ण का मुख एकदम ऐसा हो गया, उसके जितने दुर्योधन और ये सब के मुख एकदम सूख गए और लज्जित हो गया था, इसका इस अपमान का मैं बदला दूंगा, इसलिए कर्ण का उनके प्रति ऐसा भाव, इसलिए जब संकल्प कर लिया बस हो गया, और इसी का पूर्ण रूप है विवाह मंडप में गांठ बांध करके और उसके शीर में सिंदूर दे करके पति के रूप में उसको ग्रहण करता, ये क्या हुआ, ये स्कूल है,
मान लिया
वो संकल्प जो कर दिया वही विवाह, उसी तरह से किसी चीज का भी संकल्प, मैं नौ दी जरूर जाऊंगा, टिकट कटा दिया है, और यदि नहीं पहुंचे तो क्या होगा, मर गए तो, बीच में मर गया तो क्या होगा, नौ दिन जाने का फल उसको मिल गया, ये परमात्मा, इसलिए यही सब चीजें परमात्मा होती हैं, अभी इस चीज को हम लोग नहीं समझेंगे, पीछे से हम लोग इसको समझ सकते हैं, इसलिए वहां पर पार्थिव भाव है, किंतु किस रूप में कैसे है साधारण आदमी इस चीज को नहीं समझेगा, ये भजन के द्वारा समझा जा सकता है, जिसका जितना भजन का बल है उसको समझेंगे, जिसका भजन का बल नहीं है वो इस चीज को स्थूल करते हैं, इस पर दोषारोपण करते हैं, इसलिए कहते हैं सभी करे हरे पर धन, ये पांचों दूसरे का धन, कृष्ण परकीय भाव से पति नहीं है तभी हमारे प्रियतम है, और उनको मान करके उनको पाने के लिए सभी एकदम लूटने के लिए, जैसे जाने से क्या कहते हैं, एक अश्व एक खन, यदि इस घर में डकैती देकर के फिर उस घर में डकैती डालेंगे, फिर उसको भी डकैती डाल करके फिर तीसरे घर में जाएंगे, ये तो बात ठीक है, किंतु एक ही क्षण में एक ही व्यक्ति चोर दस घरों में पांच घरों में डकैती नहीं डाल सकता, तो ये कहते हैं हमारा एक मन, और एक ही क्षण में ये पांचों चीजें चाहिए, एक ही साथ में समस्त इंद्रियां देख रहे हैं, आप देखिए मैं रूप देखती हूँ, अब आंख तो देख रही है, मन कहां रहेगा, आंख के साथ रहेगा,
उसी साथ में कृष्ण की मधुर बोली सुनने के लिए उत्कंठा हुई कान से, मन नहीं रहेगा तो वो भी नहीं, इसलिए मन को वो खींच रहा है। सभी अपने अपने मन को साथ, प्रत्येक इंद्रिया स्वतंत्र नहीं है, उसमें मन का सहयोग चाहिए। इसलिए मन के सहयोग के लिए पांचों पक्ष थे एक ही समय में। इतना आकर्षण है कि एक मन कौन दिखे जाए, एक मन किस तरह। राधा जी ऐसी हैं, जब देखती हैं कृष्ण को आंखों से उनका रूप, जब उनके रूप को देखती हैं तो बस आंख क्या है मुख क्या है ये नहीं देखती, पैर कमर कैसी है नहीं देखती।
जहां पर आग लग,
यदि मंद मुस्कान देख रही हैं बस वहीं पर मन लग गया और आंखें भी वहीं पर टिक गई। यदि कृष्ण ने मधुर कोई वाणी बोली बस चित्त वित्त सब उसी सुनने में ही उनका लग गया, मन वहीं पर पहुंच गया और सब कुछ बंद हो गया। भक्तों का ऐसा होता है। और अगर कचरे हम लोगों जैसा कैसा होता है, पेड़ पर उसके ऊपर में मछली लगाई गई है, चक्र घूम रहा है, दुर्योधन गया एक पेड़ पर, चिड़िया बैठी थी एक डाल पर, और समस्त शिष्यों को लेकर के परीक्षा करने के लिए ये
द्रोणाचार्य
गए। उस समय में दुर्योधन गज मारो, ऊपर में पक्षी देखता है बैठा है, हाँ पक्षी देखता है, किस डाल पर बैठा है तो सबसे ऊंची डाल पर, पत्ते हैं कि नहीं पत्ते हैं और सब डाल है देखा, हाँ हम लोगों को देखता है तहां पूरा आप लोगों को देखता है, काचे थल से रख दो तुम्हारे कारण नहीं। भीम को बुलाया, चिड़िया देखता है कहां उसकी, उसका गर्दन देखता है कहां, डाल देखता है कहां, पेड़ देखता है तब पूरा दिखता है और आदमी को आदमी नहीं देखता। अच्छा तुम भी रखो। इस तरह से युधिष्ठिर इत्यादि समस्त लोगों को बुलाया, अर्जुन कांत में बुलाया, अर्जुन को कहा हम लोग को देखता है नहीं, पेड़ को देखता है नहीं, चिड़िया को देखता है नहीं, चिड़िया के सिर को देखता है नहीं, चिड़िया की आंख को देखता है नहीं, क्या देखता है, काली पुत्री देखता है और कुछ नहीं, मर और तुम्हारा एकदम झट कुछ नहीं। ऐसे ही भजन साधन में भी एकाग्रता जब तक नहीं आएगी नहीं, ध्यान में भी ऐसी एकाग्रता चाहिए, उसके लिए ध्यान के लिए ऐसी एकाग्रता प्रत्येक इंद्रियों के लिए। ध्यान मन का विषय है, मन के बहुत से विषय हैं तो उसका ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी, और जिसका ठीक ही नहीं हुआ जी किसका ध्यान, जो मन में है उसी का ध्यान करो तब तो सब हम लोग सभी सिद्ध हैं। क्यों
इस कार्य में तो सिद्ध
है, इस कार्य में हम सिद्ध है, जिसमें मन लगता है उसमें लगा, अपने बीबी में लगा दे, लग गया दहां लग गया किसी भी चीज में लगा लो, जो मिल जाए चीज उसी में ध्यान लगा लो, ये तो बहुत सस्ती सस्ती चीज है, ये ध्यान नहीं है। किस में ध्यान होना चाहिए, जो जगत का सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने जगत का सृष्टि किया ऐसे ऐसे ईश्वरों का भी ईश्वर है। अभी ध्यान कर रहे हैं कृष्ण सफेद है और अभी ध्यान कर रहे हैं कृष्ण काला है, और फिर देखते हैं कृष्ण बूढ़ा हो गया, उसकी दाढ़ी मूछें पक गई है, और फिर देखा जैसे वो बालक हो, ये ध्यान ठीक है कि नहीं, जब भी इसको देख रहे हैं हमारा मन ऐसा ही देखता है ठीक है नहीं। एक रस जिनका रूप है जिसमें कभी भी बात करके नहीं आ सकता, वो सनातन सब समय किशोर ही हैं, त्रिभंग रूप में खड़े हैं, राधा जी पास में खड़े हैं, उनका कोई अदल बदल नहीं है, न रूप का बदल है, न समय का, न बुढ़ापा का, न किसी चीज का, न काल का, नहीं कुछ प्रवाह, ऐसी चीज का ध्यान करो। गीता में इसको कहा गया, गीता में भी ध्यान के तरीके बतलाए गए हैं। कैसे बतलाया गया, कहे दो प्रकार के ध्यान है, एक अव्यक्त निराकार का और दूसरा क्या है, सविशेष साकार नित्य अप्राकृत रूप का ध्यान। इसमें निराकार वाला जो ध्यान है शास्त्र की पद्धति से ठीक है, किंतु
इसमें बड़ी कठिनाइयां हैं, इसमें सिद्ध होना बाधा भी कठिन है, वो लक्ष्य ठीक नहीं करता, इसलिए इसमें कठोर परिश्रम भी है और इसका लाभ भी जो देखने का है, ध्यान लगाने का, वो क्या है? ये नहीं, ये नहीं, ये कैसा? गोभी का पत्ता एक नौकर ले आया, एक सेवक गुरु का, गुरु को खिलाने के लिए, और वो गृहस्थ व्यक्ति अपने काम में चला गया, बोला सेवक से, गुरु के सेवक से, जिसको अच्छी तरह से नई अभी गोभी निकली है, इसको अच्छी तरह से सब्जी बना करके और गुरु जी को देना, मैं आऊंगा, मेरे लिए भी प्रसाद रख। वो तो चला गया और गुरु जी के चेले ने कहा, अच्छा इसको बनाना है, आलू के छिलके छिल करके देते हैं, पपीता उसको छिल करके देते हैं, तो इसको भी छिल लिया जाए। तो उसने एक पत्ता निकाला तो देखा जाए एक पत्ता, फिर दूसरे को निकाल करते 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 अंत में जो वो भी देखा जाए ये भी तो छिलका, सब फेंक करके दूरे पर फेंक दिया, गैया खा गया। जब वो नौकरी से लौटा तो पूछा जी आज सब्जी बनी गोभी की? किस चीज की गोभी? गोभी क्या? अरे वो आपने दिया वो तो सब पत्ता था, मैंने उसको लेकर के कूड़ा खाने में दे दिया, गैया खा गई। अरे देखो कैसा किया, उसमें कोई ठोस पदार्थ नहीं मिला। इसी प्रकार से जगत नहीं है, ये ब्रह्म है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, करते 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 अंत तक कुछ भी नहीं, निराकार केवल रह गया, कुछ रहा नहीं, बस इसका ध्यान करने वाले को कुछ हाथ नहीं, कुछ बस्ती नहीं। गौतम इसीलिए थक गए, गौतम ने कौन गौतम भगवान का स्वरूप भी नहीं जान सके, इसके लिए भगवान को अनकंडीशनली सरेंडर करना, सरेंडर करो पहले। ये हमारी बुद्धि से विद्या से ये नहीं होगा, ये कैसे होगा? एकमात्र भगवान के शरणागत होने से अपने को जब रियलाइज करा देंगे तब होगा। न मात्मा प्रवचन न लब्ध न मे लिया बहु न छूटे न जब ये जब इसको देख करके भगवान को करुणा उत्पन्न हो जाती है, यशोदा जी की का परिश्रम दे करके और उनका समर्पण दे करके प्रसन्न होकर के अपने आप बन गए। ऐसे ही यदि कोई भगवान के प्रति रहे, सरेंडर कर दे, तब तो हो जाए। और न था यह नहीं, यह नहीं, नई थी सपन। इसलिए गीता में कहा गया ऐसा ध्यान मत करो, इसमें कुछ लाभ नहीं होगा, केवल परिश्रम मात्र होगा। इसलिए जो हमारे ईश्वर को वक्ता जो मैं कृष्ण हूं, इसका यदि कोई ध्यान करता है तब तो ठीक। वो भी कैसे? सदगुरु का पदाश्रय करके, जिन्होंने उनका दर्शन किया उनके अनुगत्य में यदि करे तो होगा, और नहीं तो मॉन्डर्न चीजों को, मरणशील चीजों को, नश्वर वस्तुओं का ध्यान करते करते अपने आप रचपच करके जाए, उसको कुछ लाभ नहीं होगा। इन चीजों को समझना चाहिए, जिस चीज का ध्यान करते हैं कोई वस्तु होनी चाहिए, और कैसी वस्तु होनी चाहिए? नित्य आनंदमय ये वस्तु होनी चाहिए, तब तो ठीक है, अन्यथा वो। यहाँ पर जो ध्यान चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठे राधा जी के भाव में आप इंद्रियों को डकैत कह रहे हैं। डकैती डालना बहुत खराब चीज है, किंतु फिर उनको होश आता है, क्या होश आता है? हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं सभी एक साथ में घोड़े को अपने लक्ष्य की तरफ में बढ़ाना चाहते हैं, और जहां थोड़ा सा बढ़ने की चेष्टा, दो पैर उठाया इधर, इतने में दूसरा ने खींच दिया उधर पश्चिम की तरफ, इसने पूरब की तरफ, घोड़ा एक कदम बढ़ता नहीं और मरा 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 था, मुख से फेंक और जी बाहर कर दी, अंत में बेहोश होकर के भी गिर गया। इंद्रिय ना करे लोग, फिर महाप्रभु जिसका अर्थ कर रहे हैं इस श्लोक का
सुंदर जब,
इनका क्या दोष है? यदि कोई एक लाख की गड्ढी लेकर, 500-500 रुपये की गड्ढी 1 लाख की, और बाजार में ऐसे करता हुआ चला जा रहा है, क्या होगा नतीजा?
मार के लोग ले लेंगे, मार
के क्या होगा?
चीन के भाग जाएंगे।
कोई कोई ऐसे हो जाएंगे, कोई कोई तो अपने को चेक कर लेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो इसी की टोह में रहते हैं, साथ ही साथ में उसे ले लेंगे, उसे मार भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो ले लेंगे। इसलिए इसको गोपनीय रखना चाहिए। क्यों? ये लोभी ऐसा है। एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत लड़की है, खूबसूरत लड़का है, उदाहरण के लिए समझ, और उसने उसको देखा, देख करके उसके तरफ में नजर पड़ गई और देखती ही है, कौन देख रहा है कि नहीं, ये नहीं देख, ये किसका दोष है, दोष किसका, ये आंखों का ये स्वभाव है, जहां सुंदर रूप मिलेगा वहां चल जाएंगे, यदि जोर पूर्वक हम उसको हटाते हैं वो दूसरी बात है, किंतु स्वभाव यही होता है। इसलिए समस्त विषयों के प्रति इंद्रियों को जो पांच है रूप रस गंध प्रति चक्षु कर्ण नासिका, यह स्वाभाविक ये आकर्षण है, इसको कोई रोक जबरदस्ती कोई करता है दूसरी बात। अरे भाई बाहर में बात करो। इसलिए कह रहे हैं गोपियां कहती हैं, जैसे आपने कहा कि हम चलिए पतियों की सेवा करें, धर्म के विपरीत काम न करो। स्त्रियों का कर्तव्य है अपने पतियों की सेवा करना। तुम लोग यहां से चली जाओ, रात हो गई, अधिक अंधकार रात हो गई, बड़े बड़े भयानक जानवर इसमें हैं, और तुमने रात देख लिया और ये वृंदावन की शोभा देखी, अब लौट। गोपियां कहती हैं यदि ये बात ठीक है, ये हम लोग अन्याय कर रही हैं, धर्म के विरुद्ध कर रही हैं ये काम, ये नहीं होना चाहिए, ये हम मानती हैं, किंतु इसमें दोष किसका है? आपके रूप का। क्यों आपके रूप का दोष? अरे हमारी बात छोड़ दो, ये हिरण आपके पास आकर के प्रणय की भीख मांग रहा है और अपने पति को भी भूल जाता है सबको, ये क्यों? जमुना का पानी नीचे नहीं जा रहा है, ये क्यों? पेड़ की डालियां पुष्पों से भर करके नीचे में झुक रही है, ये क्यों? मोर इत्यादि उड़ जाते हैं आदमी को देख करके, पशु पक्षी जितने हैं भाग जाते हैं, और ये जितने मयूर कोकिल और जितने भी पक्षी हैं वो क्या करते हैं? कृष्ण के समीप आकर के एकदम स्थिर हो जाए, जड़ बन जाते हैं, और जड़ पेड़ जो है वो नीचे झुक करके ये चेतन जैसा दिखता है, क्यों? आपके रूप का ये दोष है। हम ये जो छोड़ रही अपने धर्म को, पति के यहां नहीं जा रही, पति सेवा नहीं करके आपके पास जा रही, आप ये रूप लेकर के नहीं आते। सूर्पनखा ने राम का रूप देकर उनके प्रति दुग्ध हो गई, ये किसका दोष? सूर्पनखा का दोष नहीं, उनका रूप भी ऐसा है। तो ये गोपियां कह रही हैं सूर्पनखा क्या क्या दोष था, अरे जब गए वन में तो वनवासी जैसा जाना चाहिए, अपने केशों को यहां बांध करके कामदेव का रूप धारण कर, क्यों अपनी स्त्री को साथ में क्यों ले लिया, परम सुंदरी, और फिर धनुष बाण क्यों ले लिया, नाकाम क्यों काटा, उसका अपराध क्या था, उनके प्रति क्यों आकर्षित हुई, ये उसका दोष है ना, उसका दोष है राम का, इतना सुंदर रूप क्यों? इसलिए गोपियां कृष्ण को ही दोष दे रही हैं, ऐसे ही समझो। यहां पर भी इंद्रिया ना करो, नहीं नहीं हमने अन्याय कहा, उनको डकैत कहा, ये सीख नहीं, उनका स्वभाव ही ऐसा है, तो हमने क्या करो, इसलिए उनका दोष नहीं है, ना करे यहां स्वभाव कहां, इसका दोष क्या है इंद्रियों का? आंख यदि कृष्ण के रूप को देखकर तो वहीं पर स्थिर हो गई, कहीं नहीं देख रही, मन उसमें एकदम लग गया, ना उनके रस को आस्वादन कर उनका सुगंध उसमें भी विधोर हो गई, और समस्त इंद्रियों के कार्यों को स्तब्ध कर दिया। उनका नाम कैसा, ऐसा नाम जो जीवा पर उदित होकर के कोटि कोटि जीवा पाने की लालसा रखता है, ये किसका दोष? नाम का दोष। नाम है माधुर्य क्यों? चीटी यहां पर घूम रही है, चीटी का दोष है वो कि इसलिए घूम रही, तुमने चीनी क्यों रखा, गुड़ क्यों रखा, ये तुम्हारा दोष है, चीटी का दोष है, उसका स्वभाव ही है, उसके लिए मुझे इसी तरह से कह रहे हैं। यहां सवार कहा तो उनका दोष क्या है? कृष्ण रूपादि महान आकर्षण तो कृष्ण के रूप गुण इत्यादि में, उनके पांच प्रकार के विषय में है, रूपादि पांच काने
गेलो पांचेर पारायण, अब ये उनको चार तरफ से खेच रही है कौन, कृष्ण का
रूप रस रूप रस पर,
और ये पांचों का प्राण ऐसा मैंने आकर्षित होकर के जा रहा है एकदम बिना चेष्टा के वो अपने आप ऊंचे तरफ ले जा रहा है, और घोड़ा एक, और ये सभी मर रहे हैं प्यास से, इनको प्यास पानी चाहिए, एक साथ दस आदमी को प्यास लगे, और एक छोटा सा कोई बर्तन है प्लास्टिक का वो कुंवर, और लोगों की ऐसी प्यास लगी है सभी एक साथ में जाते हैं पानी, तो वो क्या करेंगे, उसको पांच तरफ से पकड़ा और कोमल चीज क्या होगा, वो
हट जाएगा,
एक कोई कोई चीज है बहुत सुंदर है कपड़ा बहुत सुंदर, और दस आदमी ने पकड़ा कोई छोड़ नहीं गए, और सभी अपने तरफ में खेच रहे तो क्या होगा, हट जाएगा, ऐसे ही कर रहे हैं, ये पांचों का प्राण गया प्यास के मारे, पांचों को प्यास लगे, किसी को रूप को, किसी का रस का, किसी का गंध का, किसी का, सभी एक साथ में चाहते हैं एक घोड़े पर, कोई बिना घोड़े के नहीं जा सकता, वो घोड़ा क्या है
मन,
बिना मन के कोई नहीं जा सकता, मन के ऊपर नहीं जाना तो उसका आस्वादन नहीं होगा, इसलिए पांचों उस घोड़े को मन को लेकर के चलना चाहते हैं, मूर्त देह नारायण, और मैं जो घोड़ा रहा हमारे जीवन हमारे शरीर में कृष्ण रूप अमृत सिंधु तहा तरंग बिंदु, एक बिंदु जगत दुबाए त्रि जगत जतो नारी तारचित तो कुछ गिरी तहा दुबाए आगे उठी धार, कृष्ण का रूप इतना एक अगाध अमृत का समुद्र है कृष्ण का रूप, उसमें विश्व ब्रह्मांड सभी उस रूप में समा सकते हैं, ऐसा कृष्ण का रूप, एक बार यदि उनका रूप देख लिया वो कभी दूसरे चीज का ध्यान नहीं कर सकता, बिल्व मंगल जी ब्रज में आए आंख को फोड़ लिया, पहले रास्ते में ही गोवर्धन में जब आनोर ग्राम के पास में गोविंद कुंड के पास में कहीं बैठ गए, चिंता इतने में भूख तो लगी कोई चिंता नहीं, और वो लड़का कोई आया उनके साथ में श्रीमती राधिका जी ने कृष्ण और वो दोनों, कृष्ण राधा जी से आगे मत बढ़ना ये अंधा पकड़ लेगा छोड़ेगा नहीं, तो ये कैसे पड़ेगा पकड़ेगा ये अंधा, मैंने अंधे को निर्देश दे रहे हैं ये जाएंगी तो उसको पकड़ लेगा, वो समझ गया ये राधा जी आ रही है मैं इनको पकड़ूंगा, अंधे बड़े चतुर होते हैं और दिशा का ज्ञान होता है, जिधर से सुगंध आए जिधर से कुछ आए आवाज आए आहट आए और उस शब्द के द्वारा बतला देंगे ये व्यक्ति ये व्यक्ति, कभी कभी हम लोग कीर्तन ज्ञान होता है तो कहते ये कीर्तन आदमी कर रहा है, और नौ यदि कोई नया आ गया तो वो समझ में नहीं आता, देख लो वहां पर मंगल जी बैठे हैं चिंता कर रहे हैं, इनकी दया हो गई ऐसे भक्त को जरूर दर्शन देगा, किंतु कुछ उसमें विलंब कर रहे हैं जानबूझ करके उसकी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, राधा जी निकट में आ गए आगे मत मानना अभी पकड़ेगा, और वे एकदम तैयार हैं।